السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی فور خریدا۔ اس سال 20 لاکھ سے زیادہ مسلمان حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج جو منا میں حادثہ پیش آیا ہے رمی الجمرات کرتے ہوئے، سعودی عرب میں موجود جتنے بھی حجاج کرام ہیں وہ ابھی اپنی عید کی خوشیاں صحیح طور پہ ادا کر نہیں سکے تھے، صحیح طور سے منا نہیں سکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ وہ مسلمان جو کہ حج کی سعادت نہیں حاصل کر رہے تھے لیکن سعودی عرب میں ہی موجود تھے، اور وہ تمام مسلمان جو سعودی عرب سے باہر جہاں جہاں عید منا رہے تھے، انہوں نے جب منا میں ہونے والے یہ سانحے کی خبر سنی تو ان کی عید کی خوشیاں بالکل ختم ہو کے رہ گئیں، کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 700 سے زیادہ حجاج کرام جو کہ شہید ہو چکے ہیں سانحہ منا میں، اور 800 سے زیادہ ہیں جو کہ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 11 ستمبر کو حرم مبارک کے اندر ہی جو ایک کرین نصب تھی حرم کی توسیع کے لیے وہ گری تھی، تو 111 حاجی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور سینکڑوں حاجی جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو اس طرح سے آج کے سانحہ منا کو اور 11 ستمبر کے سانحہ حرم شریف کو ملا کر کچھ 800 سے زیادہ حجاج کرام ہیں جو کہ اب تک اس سال حج کی مبارک سعادت کے دوران شہید ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں ہیں جو کہ زخمی ہو چکے ہیں۔ سانحہ منا کی اگر بات کی جائے تو منا میں بھگدڑ کا سانحہ یہ کوئی پہلی بار پیش نہیں آیا اس سال، اس سے پہلے اتنا بڑا سانحہ 1990 میں پیش آیا تھا جس میں 1426 حجاج کرام جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور اس وقت ایک ٹنل تھی المائسم ٹنل کہ جس میں سے گزر کے آپ مکہ سے منا جاتے تھے اور پھر میدان عرفات کی طرف سے جاتے تھے، تو اس سرنگ میں دم گھٹنے سے بھگدڑ مچنے سے 1426 حجاج کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو 1990 کے بعد سے یہ شہدا کی تعداد کو ملا کر ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 700 سے زیادہ حجاج کرام شہید ہو چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ یہ شہدا کی تعداد اس سے بڑھنے نہ پائے، اور جو زخمی ہیں خدا انہیں جلد صحت نصیب کرے، اور جو باقی حجاج کرام ہیں وہ اپنے باقی مناسک کے حج بہترین طریقے سے پوری حفاظت کے ساتھ انجام دے سکیں۔ میں آپ کو کچھ یاد دلا دوں، کچھ ماضی میں لے چلوں کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ منا میں بھگدڑ کا سانحہ یہ پہلی دفعہ پیش نہیں آیا۔ 1990 کا واقعہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس کے علاوہ 1994 میں 23 مئی کو اسی طرح سے منا میں شیطان کو کنکریاں مارتے بھگدڑ مچی تھی، 270 حاجی شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1998 میں 9 اپریل کو جمرات کے پل پر حادثہ پیش آیا تھا، اسی طرح سے بھگدڑ مچی تھی، 118 حاجی شہید ہو گئے تھے اور 180 زخمی ہوئے تھے۔ 2001 5 مارچ کو اسی طرح سے منا میں شیطان کو کنکریاں مارتے بھگدڑ مچی تھی، 35 حاجی شہید ہو گئے تھے۔ 2003 11 فروری شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے منا میں بھگدڑ مچی، 14 حاجی شہید ہوئے تھے اس حادثے میں، اس واقعے میں۔ 2004 1 فروری اسی طرح سے منا میں رمی الجمرات کرتے ہوئے بھگدڑ مچی تھی، 251 حاجی شہید ہوئے تھے اور 244 زخمی ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد 2006 12 جنوری منا میں بھگدڑ مچی تھی، 346 حاجی شہید ہو گئے تھے، 289 زخمی تھے، اور اس وقت 20 لاکھ حاجی حج کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ 2006 کے بعد سے اب یہ 2015 میں واقعہ پیش آیا ہے منا میں بھگدڑ مچنے کا، اور 2006 میں جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد جمرات پل کو بھی دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا تاکہ جو رمی الجمرات کرنی ہے، جمرات وہ 3 ستون ہیں جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطان سٹوننگ آف ڈیول جنہیں کہا جاتا ہے، یا شیطان کو مارنے کے جو ستون ہیں یہ وہ جمرات کہلاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ صرف ستون ہوا کرتے تھے، اور 2004 میں سعودی حکومت نے ان ستونوں کو دیواروں کی شکل دے دی تھی، کیونکہ آمنے سامنے سے حاجی جب رمی کرتے تھے، جب کنکریاں مارتے تھے، تو وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے حجاج کرام کو بھی لگ جاتی تھی۔ تو ایک تو ستونوں کو دیوار کی شکل دی گئی، اور پھر جب 2006 کا واقعہ 2006 کا بھگدڑ کا سانحہ پیش آیا تو سعودی حکومت نے جمرات کے پل کو وسیع کر دیا، اس رمی کے علاقے کو وسیع کر دیا تاکہ کسی قسم کی بھگدڑ نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے باوجود اب 2015 میں یہ ایک بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا ہے، تو اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ ہمارا بطور مسلمان عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اتنی مبارک جگہ پر جو شہدا ہوتے ہیں وہ خدا کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اور ان کی اموات اگرچہ اس پر انتہائی افسوس ہوتا ہے لیکن وہ شہدا کا درجہ پاتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمیں اس फैक्टर से पहलू तही नहीं करने, इस फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं करना कि क्या इसमें कहीं सऊदी हुकूमत की तरफ से नाकस इंतजाम का अमल दखल तो नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इस साल मैंने आपको बताया 20 लाख से ज्यादा मुसलमान हज की सआदत हासिल कर रहे हैं, फिर हरम शरीफ की तौसी भी हो रही है, दीगर मामलात भी हैं जिन पर सऊदी हुकूमत की नजर है या उनमें सऊदी हुकूमत मसरूफ है, तो क्या कहीं हज के इंतजामात में कोई कोताही कोई कमी तो नहीं रह गई? और क्या अगर हज इंतजामात नाकिस नहीं थे तो क्या कहीं पर हुज्जाज इकराम की ट्रेनिंग में तो कोई कमी नहीं रह जाती, जो ग्रुप्स उन्हें लेकर जाते हैं, जो गाइड्स उन्हें मुख्तलिफ इलाकों से लेकर जाते हैं? क्योंकि आज का भी जो सानहा पेश आया है और इससे पहले भी जो भगदड़ के सानहात पेश आते रहे हैं, उनमें यह फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि रमी अल जमरात के इलाके में जब पहुंचते हैं हुज्जाज इकराम तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें किस रास्ते से आना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि क्लैश हो जाता है आने और जाने वाले हुज्जाज कराम का। तो उस क्लैश में जब 20 लाख अफराद आपस में गटमट हो जाएंगे, क्लैश होगा, तो यकीनी तौर पे हब्स बढ़ेगी, दम घुटेगा, और ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आज के सानहे में क्या फैक्टर रहा, इसके लिए आपको लेकर चलूंगी मिना की तरफ। वहां से मुझे मिर्जा नासिर अली ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सहाफी हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा नासिर अली, और ये बताइएगा कि कुछ एग्जैक्टली तायुन हो सका है कि आज का सानहा पेश किस तरह से आया?
ये मैं इस मिना में मौजूद हूँ
जी।
ये वाकया, ये रमी करने के लिए जाने के जितने भी रास्ते हैं उन उधर से वापस नहीं पड़ता, वापसी आने के रास्ते उन्होंने दूसरे बनाए हुए हैं। 2006 के वाकये के बाद ही फोर फ्लोर ये कर दिया था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा कोई वाकया पेश आए।
ठीक,
ये स्ट्रीट नंबर 204 में जब लोग आ रहे थे रमी करने के लिए, तो एक टोला, पता नहीं वो कौन से मुल्क का था, कोई समझ अभी तक पता नहीं लग रहा, वो एकदम वापसी अक्स पर बैक साइड पे आया है, जब वहां पे आने का रास्ता नहीं था, बैक साइड पे स्पीड से आया है और लोगों को धक्के मारते हुए, जबकि दर्जा हरारत 45 था आज मीना का, धक्के मारते हुए आप बगदर मिटिए, और उसमें जितनी भी अमवात हुई है वो दम घुटने की वजह से हुई है, और जख्मी जितने हुए एक के ऊपर एक, उसके बाद पीछे बगदर जितने भी दूर वो लोग जाते रहे हैं और उस नीचे आते रहे हैं, कोई लेडीज और मरने वालों में ज्यादा तादाद बुजुर्ग है, औरतें हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, यंग जनरेशन बहुत कम है, और उन और इस वक्त हॉस्पिटल में तकरीबन 2000 के करीब शहीद और जख्मी लाए गए हैं। अभी सही तायुन नहीं हो पा रहा, उनमें 100 से ज्यादा पाकिस्तानी है जो शहीद हुए हैं, लेकिन दो का नाम सिर्फ सामने आया है, जिसमें एक आरिफ लाहौर से ग्रीन टाउन से है और दूसरा 23 साल अब्दुल मालिक है, जिसका ताल्लुक तख्त भाई से है। अभी सही, क्योंकि पूरे मक्के को सील कर दिया गया है, दाखिली खारजी रास्ते सब सील कर दिए गए हैं, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, और हर जगह चेकिंग शुरू कर दी गई है, और हुकूमती अमला सारे 500 का अमला रेस्क्यू जो इस वक्त अमल जारी रखे है
जी।
और तकरीबन 8 हेलीकॉप्टर इस वक्त काम कर रहे हैं, और अभी तक शहीद ज्यादा से ज्यादा, खदशा है कि और भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि जख्मी कई ऐसे जख्मी हैं जिनका पता नहीं, वो किसी वक्त भी अल्लाह ताला के प्यारे हो सकते हैं।
हमारी दुआ है कि शोहदा की तादाद इससे बढ़ने नहीं पाए, और जो जख्मी हैं खुदा उन्हें सेहत नसीब करे, उन्हें जिंदगी नसीब करे। लेकिन ये बताएं कि क्या हज के इंतजामात पे कोई सवाल उठाया जा सकता है? आप तो मीना में मौजूद हैं, इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, तो हज के इंतजामात इस साल कैसे रहे हैं?
रमी करने के लिए इतना इंतजाम होता था, इधर अस्करी खड़ी होती थी, लेकिन आज मैंने खुद कंकर मारी है, लेकिन अस्करी का कोई अफराद मुझे नजर आ रहा था। पहले ये जद्दा और मक्का से सिक्योरिटी लेकर आते थे, अब के पहली मर्तबा 1 लाख अस्करी के लोग, आर्मी बीच में शामिल है, वो रियाद से इधर बुलाए गए हैं, और वो ऐसे खड़े थे जैसे ही वो कुछ जानते ही नहीं है, किसी ना उन्होंने किसी को रोका है, और वापसी आने वाले जो पूरा ग्रुप था, समझ नहीं आ रहा वो कौन सा ग्रुप था, किस मुल्क का ग्रुप था, जिन्होंने एकदम दौड़ना शुरू कर दिया बैक साइड पे, मुल्क दुश्मन थे क्या थे कोई पता नहीं, अभी तक किसी की कोई समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने एक दूसरे को धक्के मारे हैं, भगदड़ मची है और लोग मरना शुरू हो गया, उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। उनको नजदीक किसी को अल नूर हॉस्पिटल इधर है, उसमें तमाम को जख्मियों को
मैं मिर्जा नासिर, मैं इन्हीं इंतजाम के मामले पर आपसे मजीद सवाल करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि हर साल की बुनियाद पर सिक्योरिटी के लिए लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन इस दफा सिक्योरिटी के लिए इंतजाम उस तरह से मुनासिब नजर नहीं आए, और अगर थे तो जो सिक्योरिटी के लोग खड़े थे वो उतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे सिक्योरिटी के इंतजाम पर, लोगों को संभालने के इंतजाम पर।
वापसी जब लोग आ रहे थे तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, तो किसी पुलिस वाले ने उनको नहीं रोका। मैंने खुद देखा, मैंने जब कंकर मारी है मैंने खुद देखा, किसी पुलिस वाले ने उनको नहीं रोका। जबकि पहले पिछले साल या उससे पहले जब से ये फोर फ्लोर की है, कोई भी वापसी एक फर्द भी जाता था उसको रोक लिया जाता था, लेकिन किसी सिक्योरिटी वाले ने उनको नहीं रोका है।
वो जो एक ग्रुप वापस आ रहा था जिसके वापस आने की वजह से भगदड़ मची है, उसे रोकने वाला कोई नहीं था,
कोई रोकने वाला नहीं था, और किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसमें चार या पांच पुलिस वाले होंगे, बाकी कोई पुलिस वाला उधर मौजूद नहीं था। और वो उस ग्रुप को ये भी पता था कि जाने का रास्ता आगे है और वापसी बैक रास्ता ये नहीं है। वो जानबूझकर उस रास्ते पे वापस हुआ है स्ट्रीट नंबर 204 पर, और उन्होंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। किसी को कोई मालूम नहीं वो क्यों गए हैं, स्पीड से गए हैं, एक दूसरे को धक्के मारे उन्होंने जब ये वाक्य पेश हुआ है।
आप कह रहे हैं कि वो जो ग्रुप वापस आ रहा था जाने के रास्ते पर, वो वापस आ रहा था, उसे मालूम था कि ये वापसी का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ वन वे है, लेकिन उसके बावजूद वो वापस आया। तो मैं सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि इस साल हुजाज की ट्रेनिंग का इंतजाम आपने कैसे देखा, उन्हें आने जाने के रास्ते किस तरफ से जाना है, कैसे मनासे के हज अदा करने हैं, तो जो ग्रुप्स थे उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग थी इस साल भी?
वो जो हाजी हजाज कराम जो मुजलफे में रात गुजारते हैं, सुबह उठने के बाद जब वो किसान को कंकर मारने के लिए जाते हैं, वो रास्ते इस तरीके से बनाए हुए हैं तो आदमी खुद ब खुद उन रास्तों पे चढ़ता जाता है। उसमें कोई भी वापसी का रास्ता नहीं, वापसी का रास्ता दूसरी साइड पे दिया हुआ है, बैक साइड पे, उस साइड पे कोई वापसी का रास्ता नहीं है। और तकरीबन 8 या 9 रोड बनते हैं जिनके ऊपर से सिर्फ आने जाने का रास्ता है रमी करने के लिए, वापसी आने का कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल कोई उसमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है।
ठीक है, मुझे ये बताइए कि इस वक्त मीना में क्या सूरत हाल है, और जब ये सानेहा पेश आया तो उसके बाद रमी अल जमरात शुरू करवा दी गई थी?
रमी जमरात तकरीबन 2 घंटे के बाद उन्होंने शुरू करवाई है, और अभी सिक्योरिटी इतनी सख्त है, हर आदमी को चेक किया जा रहा है, बल्कि इधर के जो मकामी लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट लेने के बाद उनको चेक किया जा रहा है।
तो इस वक्त सूरत हाल रमी अल जमरात करने के लिए अंडर कंट्रोल है?
बहुत ज्यादा कंट्रोल है, अगर ये अगर पहले इतना किया जाता तो शायद ये वाकया पेश ना आता, इतना कंट्रोल उन्होंने अब किया हुआ है। 6-8 हेलीकॉप्टर तकरीबन इस वक्त ये इस काम में लगे हुए हैं, और अभी तक उस रोड 204 स्ट्रीट पर पड़ी है उनको मुकम्मल तौर इतना रश है, तकरीबन 34 लाख का मजमा इस वक्त कर रहा है, इसमें मकामी लोग भी हैं, बाहर से आने वाले लोग भी हैं, 34 लाख का मजमा हज कर रहे हैं। और आज पहला दिन है, एक शैतान को कंकर मारने का दिन है, और रश बहुत ज्यादा होता है, और दर्जा हरारत भी 45 पे चल रहा है। इस वक्त तक इतनी गर्मी इस वक्त इसमें मौजूद है कि तकरीबन 42 तक अभी तक दर्जा हरारत है।
ठीक है मिर्जा नासिर अली, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी हैं मीना से हमें रिपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। मिर्जा नासिर अली से मज़ीद बात भी करेंगे, इसके अलावा कुछ उलमाए कराम से, और कोशिश करेंगे कि मीना में जो पाकिस्तान का हज कमीशन है और ख़ासतौर पर जो हज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हैं या DG हैं, उनसे भी हम बात कर सकें। और ये जो एक पहलू निकल के सामने आया है कि इस दफ़ा हज के नाकिस इंतजाम थे, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक, हम बात कर रहे हैं सानेह मीना के मुतालिक, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 700 से ज़्यादा हुजाज कराम शहीद हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त मक्का मुकरमा में हरम शरीफ में हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार यूसुफ साहब।
वालेकुम
अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि आपके पास क्या इत्तला आई है पाकिस्तानियों के मुतालिक?
ये इस वक्त जो इस
बदकिस्मत हादसे में जो लोग शहीद हुए हैं तकरीबन 700 से ज्यादा तो डेथ कैजुअल्टी हो चुकी हैं
जी,
और इसी तरीके से कोई 800 से ज्यादा इंजर्ड हैं
जी।
तो ये जो पाकिस्तानियों के बारे में गैर मुसद्दा तस्दीक जो गैर मुसद्दा जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो सिर्फ 7 ही इतला है, लेकिन बाकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी क्योंकि जो यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो सारा इलाका उसने घेरे में लिया, और जितने लोग चाहे वो डेड बॉडी हो या जो इंजर्ड हो वो अस्पतालों में ले जाते हैं और उसके बाद वो ऑफिशियल जो अनाउंस करते हैं उस वक्त किसी को सही इत्तला भी नहीं देते।
7 पाकिस्तानी हाजी आप कह रहे हैं कि शहीद हैं लेकिन गैर मुसद्दका इत्तला है ये?
हाँ जी, गैर मुसद्दका इत्तला जो बाहर से हमें मिली है।
और जख्मी पाकिस्तानी हाजियों के मुताबिक कोई खबर है, कोई जख्मियों में है पाकिस्तानी हाजी शामिल?
नहीं नहीं, ऐसा भी कोई खास मतलब है नहीं है, इक्का दुक्का जो इत्तला मिलती है, लेकिन इस तरीके से क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में इस वक्त तक हमारे लोगों को वो नहीं छोड़ते जब तक के वो खुद पहले तफ्तीश कर लेते हैं, फिर इसके बाद हमारे जहाँ मेडिकल हज मिशन है वो भी काम कर रहा है, मैंने डीजी से बात की है, हमारे एम्बेसडर मंजूरुल हक साहब हैं यहाँ उनसे भी बात की है, सेक्रेटरी जो वजारत मंजूर उमूर उन सबको मैंने हिदायत की है
जी
कि अपने आदमी भेज कर अस्पतालों में पता करें पाकिस्तानी कितने हैं, और इसी तरीके से जो डेथ कैजुअल्टी हुई है उसका भी पता करें, वो अपने जरिए मालूमात कर रहे हैं रास्ते कर रहे हैं, लेकिन आपको खैर पता ही है कि यहाँ सबसे पहले जो सऊदी हुकूमत है
जी
वो जितने भी अगर इस तरह के वाकयात होते हैं पहले वो अपनी एक सिविल डिफेंस के जरिए
जी
तस्दीक करके उसके बाद वो अनाउंस करते हैं, फिर दूसरे लोगों से रब्ता करते हैं, प्रेस रिलीज देते हैं, तो इसमें जरा वक्त खर्च हो रहा है।
आपकी सऊदी हुकाम से बात भी यकीनन हो रही होगी, आपकी खुद भी हो रही होगी बात
ये?
आपकी सऊदी हुकाम से खुद भी बात हो रही होगी सरदार साहब?
हाँ, सऊदी हुकाम से हमारे जो ये यहाँ का जो हज मिशन है वो भी रबते में उनके जो मुतलका लोग हैं और इसके साथ ही जो हमारे एम्बेसडर आए हुए हैं वो भी रबते में, तो जो ये सारी सूरत हाल है क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और जो हमारे लोग इस वक्त कोई हरम शरीफ में है, कोई मीना में है, कोई मुख्तलिफ खेमों में है, तो इससे हम अपने जरिए भी जो तस्दीक कर रहे हैं कि अपने लोग हमारे जितने भी वजारत मजबी उमूर के जो मावनीन आए हुए हैं या स्टाफ आया हुआ है तो वो इस काम पर लगा दिया है कि आप अपने जरिए अपने अपने जितने भी टेंट हैं तकरीबन हमारे 139 सरकारी जो मकसद हैं
जी,
और इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जितने लोग आए हुए हैं उनके मकसद में भी जाकर ये सारी मालूमात हासिल करें कि हाजी कितने हमारे हैं, और इसी तरीके से वो सऊदी हुकूमत के साथ भी रबते में।
सरदार यूसुफ साहब, इसी मामले पर सानहा बहुत बड़ा है, पाकिस्तानी हुजाज की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस साल भी हज करने के लिए गई है, तो जो नंबर्स हज कमीशन के प्रोवाइड किए गए हैं आपकी तरफ से भी, हज कमीशन की तरफ हज मिशन की तरफ से भी, पाकिस्तानियों को शिकायत ये है पाकिस्तान से कि वो नंबर तो दे दिए गए हैं लेकिन उन पर रबता नहीं हो पा रहा, या नंबर फोन बजता रहता है कोई वहां से रिसीव नहीं करता, या अगर कोई रिसीव करता है तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही।
हाँ, ये बात अभी मैंने मुझे पहले भी किसी ने बताई थी, मैंने अपने जो डीजी है उनसे भी दोबारा ये उनको ताकीद की है और एम्बेसडर साहब खुद हैं उनको भी मैंने कहा है कि वहाँ जो ये नंबर हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं उन पर ड्यूटी लगाई जाए ताकि इस लोगों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो दूर हों, और हेल्पलाइन वहाँ पाकिस्तान में भी नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर भी है
जी,
तो 3-4 जगह यानी इस तरह के नंबर हेल्पलाइन के दिए हुए हैं, हमारी तो कोशिश है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं बहन हैं उनको सही मालूमात पूरी तौर पर पहुँचाई जाए। ये जहाँ वाकया पेश आया है ये ज्यादातर उस इलाके में हमारे पाकिस्तानी हाजी नहीं रहते थे, वो उस साइड पर ज्यादातर अफ्रीकन हाजी थे और दूसरे ममालिक के थे, हमारे पाकिस्तानी हाजी उस तरफ उनका मकसद नहीं थे, लेकिन हम अपने जरिए जो सारी मालूमात कर रहे हैं कि अगर कोई रास्ते में इसी तरीके से खुदा ना खास्ता इस तरह का वाकये में आ गया है तो उसको हम जरूर तस्दीक करें और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं,
अभी तक जितने भी इत्तलात आई हैं, लोग इत्तलात दे रहे हैं, मुझसे भी रास्ते में रहते हैं जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, तो मैं तो खैर खुद भी अटेंड करता हूँ और मैंने अपने उस वजारत के जितने लोग उनको हिदायत की है कि बाकायदा जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जाए उनके नाम भी दिए जाए और वो सही तरीके से अटेंड करें, लोग सही मालूम है।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सरदार यूसुफ साहब। मैं समझ सकती हूँ कि सानहा कितना बड़ा है और इस सूरत हाल पर जो अफरा तफरी होती है और जो मैनेजमेंट होती है वो आसान काम नहीं होता करना, लेकिन उसके बावजूद मैं लोगों की आसानी के लिए, खासतौर पर पाकिस्तानी आवाम के इत्मीनान के लिए आपसे जानना चाहूँगी कि कब तक पाकिस्तान का हज मिशन या पाकिस्तान की वजारत या एम्बेसडर या आपकी तरफ से कब तक ये मुमकिन हो सकेगा कि पाकिस्तानियों के मुतालिक मुसद्दिका इत्तला पहुंच सके हम सक?
हमारी तो कोशिश है जितनी जल्द मुमकिन हो सके। अभी भी मीना में हमारे वहाँ पर मंजूर अल्लाह के एम्बेसडर वो भी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी जनरल भी उमूर वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी तरह डीजी वो भी बैठे हुए हैं। मक्का मुकर्रमा में मैं खुद यहाँ सुबह में आ गया था, इस हादसे से पहले आ गया था
जी,
तो मैं यहाँ पर भी रास्ते में हूँ उनसे, और हमारी तो ये कोशिश है कि जितना जल्द मुकम्मल हो सके, मुमकिन हो सके, तो सही इन्फॉर्मेशन अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को पहुंचाए।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जो मुश्किलात पाकिस्तानियों को अपने प्यारों के बारे में जानने में पेश आ रही हैं वो जल्द अज जल्द दूर हो सकें। सरदार यूसुफ साहब ये फरमाइएगा कि इस दफ़ा बहुत बड़ी तादाद में हुजाज कराम जो हैं वो हज की सआदत हासिल कर रहे हैं, तो सऊदी हुकूमत के हज इंतजाम आपको कैसे लगे हैं? आप खुद भी इस दफ़ा हज करने वालों में शामिल हैं।
जो इंतजाम है माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजाम है, और ये सारे जहाँ ज्यादातर पहले हादसा होते थे वहाँ पर ये हादसा तो खैर नहीं हुआ, उससे हटकर हुआ है, जमरात पर नहीं हुआ, और वहाँ तो उन्होंने अच्छे इंतजाम किए हैं, बाकी भी अच्छे इंतजाम किए हैं। बदकिस्मती से जो ये वाकया पेश आया है, अब इसकी तहकीक होगी कि किस तरह आ गया है, क्योंकि जो वहाँ जितनी सड़कें आकर चौक में मिलती थी तो एक साइड को लोग जो रुक कर वो जाते थे दूसरी साइड पर, फिर उसके बाद उनका नंबर आता था, लेकिन जो हमें मालूमात हुई है कि दूसरी साइड से भी लोग आए, वो रुके नहीं है और वो भी आगे मतलब है लोगों का इंतजार नहीं किया, इस वजह से यानी ये भगदड़ मच गई और ये हादसा पेश आ गया।
कुछ ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं
की बात है, सऊदी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह जो खादिम अरबैन शरीफैन के हुक्म पर बड़े अच्छे इंतजाम किए हुए और हर जगह हर मकाम पर उनके जो कोठी के लोग भी मौजूद हो रहे हैं आजकल, और इसी तरीके से उनके जो ट्रैफिक के लोग भी मौजूद हैं और बाकी भी जो उन्होंने वहाँ पर मीना में खास तौर पर, और इसी तरीके से आगे जो अरफात शरीफ में जो इंतजाम किए थे बड़े अच्छे इंतजाम हैं।
ये खबर भी सुनने में आ रही है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए या सिक्योरिटी कंट्रोल करने के लिए जितनी नफरी आमतौर पर पिछले सालों में तैनात की जाती थी वो इस दफा नहीं थी रमी अल जमरात करने के दौरान।
किस तरह है
कि जो आमतौर पर सिक्योरिटी तैनात की जाती है सऊदी हुकूमत की तरफ से ह्यूमन ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, हुजाज की आमदरफ्त कंट्रोल करने के लिए, वो इस साल उतनी नहीं थी सऊदी हुकूमत की तरफ से?
नहीं नहीं, इस तरह की तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। इंतजाम तो बिल्कुल ठीक ठाक से हम, क्योंकि आज ट्रैफिक वगैरह तो जो गैर जरूरी है वो तो वैसे बंद कर दी जाती है
जी।
और जो जिसकी तस्री होती है बसेज वगैरह की, वो तस्री वगैरह मतलब है वो जो लोग बसें जा सकती हैं, वो गाड़ियां जा सकती हैं, बाकी किसी को भी इजाजत नहीं होती, जिसकी वजह से मतलब है कि कंट्रोल करने के लिए के कोई खुदा न खास्ता इस तरह का वाकया पेश ना आए। लेकिन अब ये वाकया जो पेश आया है इसकी अब सूरत हाल सही सामने आ जाएगी कि इसकी क्या वजह थी।
अब क्या कहीं हाजियों की ट्रेनिंग में भी कुछ कमी रह जाती है अमूमी तौर पर सरदार यूसुफ साहब, कि उन्हें पता हो कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से वापस नहीं आना, भगदड़ से किस तरह बचना है, धूप से कैसे बचना है, मनासिक हज किस तरह से बेहतर तौर पे अदा करने हैं, क्या इन सब ट्रेनिंग्स में भी कहीं कुछ कमी रह जाती है?
जी, कमी तो खैर जरूर महसूस की जाती है, लेकिन कोशिश तो ये की जाती है, जिस तरह आप हमारे हाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो सही तरीके से ट्रेनिंग वगैरह उनको दी गई है और उसके साथ यहाँ पर भी इंतजामात किए, हमारे जितने जो मावनीन आए हैं वो जगह जगह उनके साथ रास्ते में होते हैं और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया से आते हैं ना हजाज, जो पूरी दुनिया से आते हैं और अफ्रीका से आते हैं, कोई इसी तरीके से अरब ममालिक है, दूसरी से आते हैं, एशिया से भी और यूरोप से भी आते हैं, तो यानी ये तो खैर नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरीके से उनको ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तानी आदमियों की बात है, हमने तो फसल वसा कोशिश की है कि सही किस्म की ट्रेनिंग हो, उनको बाकायदा ब्रोशर वगैरह और सारी हदायत और वो शारीरिक तौर पर भी तकसीम की, और यहाँ पर भी जितने हमारे लोग वहाँ से भेजे हैं जो कि खिदमत के लिए, तो वो भी हर बिल्डिंग में और इसी तरीके से हर गाड़ी में उनके साथ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हाजी पहले से बेहतर अब जरा डिसिप्लिन में आए और वो इस चीज का एहसास भी रखते हैं। लेकिन मजीद इसकी जरूरत है, जरूर इसका मतलब है अच्छी तरीके से यानी
हाजियों की मजीद बेहतर ट्रेनिंग की पूरी दुनिया में जरूरत है ताकि ये वाकयात ये सानहात मजीद ना हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी सरदार यूसुफ साहब के, ये फरमाइएगा कि आइंदा साल, क्योंकि 2006 के बाद 9 साल के बाद ये भगदड़ का अब वाकया हुआ है 2015 में, तो अगले साल ये वाकया खुदा ना करे इससे बचाव मुमकिन हो सके, खुदा ना करे कि वाकया हो, इसके लिए क्या करना चाहिए सऊदी हुकूमत को खास तौर पर?
देखें जी, आप तो इस किस्म के अब वाक्य की पूरी जो तफ्तीश होगी तो हकायक सामने आएंगे कि क्या वजह
जी।
दूसरी बात यह है कि आइंदा साल अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह हरम शरीफ की तोसी का काम मुकम्मल हो जाएगा
जी।
तो जिस तरह के सऊदी हुकूमत ने और खास तौर पर खादिम हरमैन शरीफ ने जो ये हिदायत दी है कि जल्दी काम खत्म हो
जी।
तो ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं वो अपना उस पर हज की शहादत हासिल कर सकें, तो इस हवाले से आइंदा साल तो इंशाल्लाह और ज्यादा तादाद होगी। इस साल भी तकरीबन अगर 20-22 लाख लोग थे या 20-25 लाख थे, तो आइंदा साल मजीद ज्यादा होंगे। उस हवाले से सऊदी हुकूमत हर साल यानी एक उनके इंतजाम पहले से शुरू करती है और फिर मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसमें सारे इंतजामात का जायजा लिया जाता है।
तो सरदार यूसुफ साहब, इसी से एक और सवाल भी जन्म लेता है, क्या पाबंदी लगा देनी चाहिए हुजाज कराम की सालाना तादाद पर या इसे बढ़ते रहने देना चाहिए?
नहीं, पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हरम शरीफ की तोसी का काम जो हुआ था वो तकरीबन आखिरी मराइल में है, इंशाल्लाह आइंदा साल तक मुकम्मल हो जाएगा। और इसी मकसद के लिए के जिन जिन ममालिक पर पहले ये यानी चटवटी लगी थी वो खत्म की जाए और दोबारा मतलब वो बहाल हो जाए और हाजी जितने भी हो सही तरीके से अपने हज कर सके।
ठीक,
तो ये तो खैर कमी नहीं करनी चाहिए आबादी के मुताबिक, जिस तरह जो जो आबादी बढ़ती है तो हाजियों की तादाद भी बढ़ती है। एक फार्मूला तय किया गया है कि हर 10 अफराद पर एक शख्स हज कर सकता है
जी।
तो ये उस आबादी के मुताबिक पूरी दुनिया में उस फार्मूले के मुताबिक कोटा मुकर्रर होता है
जी।
तो पाकिस्तान का कोटा तकरीबन 1,80,000 था, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो यहाँ पर हरम शरीफ पर काम हो रहा था तो जिस तरह पूरी दुनिया के जो कोटे पर चटौती लगी उसमें पाकिस्तान पर भी 20% कम हुए, तो इंशाल्लाह आइंदा साल हम उम्मीद रखते हैं कि दोबारा बहाल हो जाएंगे। बल्कि उम्मीद ये है कि जिस तरह 2016 में पाकिस्तान की सेंसस भी हो जाएगी तो आबादी भी बढ़ जाएगी तो कोटा भी मजीद इंशाल्लाह बढ़ेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार यूसुफ। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर हमसे बात करते हुए कह रहे थे कि एक तो वो खुद सऊदी हुकूमत के हज इंतजामात से मुतमईन हैं, हज इंतजामात नाकिस नहीं थे, लेकिन हुजाज कराम की ट्रेनिंग के मुतालिक वो ज़रूर सवाल उठा रहे थे कि ट्रेनिंग मजीद बेहतर होनी चाहिए, और साथ ही वो ये उम्मीद कर रहे थे कि हरम शरीफ की और आस पास के इलाकों की तौसी हो रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा साल से ऐसे किसी भी सानहात से बचा जा सकेगा। मजीद भी बात करेंगे सानहा मीना पर और इसे आइंदा सालों में कैसे किया जा सकता है। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं सानहा मिना पर, जिस पर अब तक के इत्तलात के मुताबिक 700 से ज्यादा हुजाज कराम शहीद हो चुके हैं, 800 से ज्यादा हैं जो कि जख्मी हैं। जो शहदा हैं, जो जख्मी हैं, सबके लिए आपकी भरपूर दुआएं होनी चाहिए। लेकिन ये सानहा तवातुर से क्यों पेश आते हैं हज के दौरान? क्या इसमें सऊदी हुकूमत के नाकिस इंतजाम का अमल दखल है या हुजाज कराम की मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है? इसी मामले पर अब मैं मजीद बात को आगे बढ़ाऊंगी और इसके लिए मुझे मुल्क के जय्यद उलमाए कराम ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करूंगी मशहूर मजहबी स्कॉलर अलामा इब्तिसाम इलाही जहीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, आप आज के साना है मिना पर क्या कहेंगे और ये फरमाइएगा कि क्या इसमें सऊदी हुकाम के नाकिस इंतजाम का कोई अमल दखल है या हुजाज कराम की ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी रह जाती है?
देखिए बुनियादी तौर बात यह है, जब हम पिछले कई सालों में नजर डालते हैं तो कुछ साल पहले जमरात की जो कंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर बड़ा नैरो नेस्ट थी और वो बिल्कुल वर्टिकल से बने हुए थे। लेटर उन्होंने हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड किया गया चौड़ाई की तरफ और साथ ही उनके पैसेज भी बढ़ाए गए और अब इस वक्त पोजीशन ये है कि तीन मंजिलें ऐसी हैं जो जमरात की तरफ जाती हैं और सऊदी हुकूमत ने उसमें एक पॉलिसी ये बता की है कि जब आप जमरात में कंकरियां मारने के लिए जाते हैं तो आप उसी पैसेज से वापस भी नहीं आ सकते, बल्कि आपको राउंड टर्न लेके दोबारा दूसरे पैसे से वापस आना पड़ता है।
ठीक।
इसका बुनियादी मकसद यह है कि वहां पे जो ना इज़्तिहाम या हुजूम ज्यादा जमा ना हो। ये सारी की सारी डेवलपमेंट के बावजूद एक चीज ऐसी है जिससे हाजियों की अक्सरियत नाश ना है, वो ये है कि जब जिस वक्त वो आपका तुलू आफ्ताब हो जाता है तो उसके बाद हाजियों की बहुत बड़ी तादाद जो है ना उसकी ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द जो है ना वो कंकरियां मारने के लिए माहिर हो जाते हैं। हालांकि जो गुरूब आफ्ताब का कंकरियां मारने का वक्त होता है तो अगर आप इसके अंदर आधा घंटा घंटा दो घंटे का अगर पॉज दे और उसके बाद जो है ना हाजियों के वहां से निकलने का इंतजार करके रश के कम होने का इंतजार करके अगर आप जमरात की तरफ जाएं तो उसके नतीजे के अंदर वहां पे जो है ना इस बात का इम्तिहान के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे बहुत से हाजी जिनका ताल्लुक उन ममालिक से जो अरबी जुबान भी जानते वो आमतौर पर उनकी इंस्ट्रक्शन को ना सही फॉलो नहीं कर पाते और कई मरतबा यू टर्न लेने की बजाय उसी पैसे से वापस आने की कोशिश करते हैं। अब जिस वक्त आप उनको कंकरियां मारते हैं उसके बाद जो है ना वापसी के लिए कोई आपका आने के इम्कान नहीं होते बल्कि आपको सीधा ही उधर जाना होता है, तो ये टकराव की कैफियत पैदा हो जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जहां पे इस बात की जरूरत है कि जो हाजी जो है वो थोड़ा सब्र संभाल का मुजाहरा करें, वहां पे DVDs के जरिए, CDs के जरिए, मल्टी मीडिया के जरिए जो उनको गाइड करना चाहिए ताकि वो जो सिचुएशन जो है ना उनके लिए कोई इस तरह की ना हो जिस तरह बिल्कुल अननोन सिचुएशन होती है, उसे फेस करें तो उनको बिल्कुल नॉर्मल महसूस।
अलामा इब्तिसाम साहब बहुत अहम और बहुत ज़बरदस्त किस्म की तजावीज़ दे रहे थे कि आइंदा इस किस्म के सानहात से बचने के लिए सऊदी हुकूमत को और हुजाज कराम को क्या करना चाहिए। अलामा साहब आपसे मज़ीद भी बात होगी लेकिन इस वक्त मुझे एक और जय्यद आलिम अलामा अमीन शहीदी साहब ने ज्वाइन किया है, मशहूर मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अलामा अमीन शहीदी साहब, और ये फरमाइएगा हजरत के आज सानहा मिना पर आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी नज़र में क्या इसमें सऊदी हुकूमत के नाकिस इंतजामात का ज्यादा अमल दखल है या हुजाज कराम की ट्रेनिंग में कहीं कोई खामी रह जाती है?
सबसे पहले तो मैं उन तमाम हाजी साहिबान और घर वालों से इजहार ताज़ियत करना चाहूंगा और ये दुआ करना चाहूंगा कि अल्लाह इंतहाई मुकद्दस मकाम पर इंतहाई मुकद्दस दिन के अंदर और इंतहाई मुकद्दस इबादत के दौरान इनकी वफात और इनकी शहादत हुई है तो अल्लाह इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
आमीन।
जहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जिस पर मेरा ख्याल है इस पर पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुसलमान का हर इंसान हर फर्द जो है वो गमगीन है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है ये मसला भी है जैसे आपने इसकी तरफ इशारा फरमाया के बहरहाल आया ये नाकिस इंतजामी वजूहत है या फिर जो है हाजियों की तरबियत। देखिए दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व है, जब एक बहुत बड़ा अजदहाम होता है इंसानों का तो वहां पर उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता, ये अगली बात है, इसलिए इसमें किसी को खाम खा में मौजूद इजाम कराना ये जरूरी है। लेकिन कोई ऐसा इज्तम नहीं है जो पहले से मुनजम न किया गया हो, जाहिर है साल हर साल का तजुबा है सऊदियों का हाजियों को डील करने के वाले मुश्किलात के वाले से भी इस तरह के बड़े बड़े वाकयात हुए हैं जिनमें हजार से ज्यादा लोग जाने शहादत नोश कर चुके हैं। तो अब एक अरसे के बाद अब इस साल दो बड़े वाकयात हुए या तीन हुए हैं, एक वो जो خود مطاف کے اندر اور کعبہ کے اندر جو واقعہ ہوا,
کرین کا حادثہ,
ظاہر ہے یہ جو کرین کا حادثہ تھا یہ بھی یقینی طور پر انسانی لڑکیوں کا نتیجہ تھا. جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں حاجی آتے ہیں وہاں پر کوئی ایسا رسک لینے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو یقیناً غفلت تھی, ان غفلت کے مرتکب افراد کو ظاہر ہے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اور آئندہ اس کی احتیاط ہونی چاہیے. جہاں تک منا کے اس واقعے کا تعلق ہے یہ بھی ایک انسانی المیہ ہے. جیسے بھی ابتسام الہی ظہیر صاحب فرما رہے تھے اچھی باتیں کر رہے تھے, یہ میں کئی دفعہ گیا ہوں اور میں نے بھی یہ مشاہدات کیے ہیں اپنی نگاہوں میں دیکھے ہیں کہ حاجیوں کے لیے سعودی اپنی طرف سے کوششیں تو کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں چونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے
جی.
لیکن دوسری طرف ہم اس کے مقابلے میں دو تین اور اجتماعات بھی دنیا میں دیکھتے ہیں. مثلا ویٹیکن سٹی میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 30-40 لاکھ کا ہوتا ہے
جی.
کربلا کے اندر بھی ہر سال چہلم کے موقع پر 2.25 کروڑ انسان جمع ہوتے ہیں, 2.25 کروڑ انسان, یہاں پر 30 لاکھ ہے نا
جی.
تو وہاں پر اس طرح کے واقعات ہم نے آج تک نہیں سنے. ہاں دہشت گردی کا, خود کش حملے کا, دھماکے کا یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کی بدنظمی اور پھر قدموں تلے آ کر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی کیجوئلٹیز کا ہم نے وہاں پر کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ نہ دیکھا نہ سنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی طرف شاید ہماری توجہ کی ضرورت ہے, انتظامی امور کے بارے سے توجہ کی ضرورت ہے, اور جو غفلت کے مرتکب افراد ہیں ان کی گرفت کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ میں اس طرح کے واقعات کے تکرار سے مزید قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہو.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. علامہ امین شہیدی صاحب فرما رہے تھے کہ انتظامات کو, حج کے اور حجاج کرام کی ٹریننگ کو, ان دونوں امور کو آئندہ سال سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسے سانحات, ایسے واقعات نہ ہو سکیں. پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے اپیل کروں گی کہ جو حاجی شہید ہوئے ہیں, جو زخمی ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے گا, نہ صرف آج بلکہ کل عید کے بابرکت دن کے موقع پر بھی. آپ کو عید مبارک اور آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ.